लास्ट संडे किसी साल में शुक्र पर, तो उस वक्त चूंकि मैंने बड़ा मुख्तसर सा एक जवाब दे दिया था शुक्र पर, तो मेरी फीलिंग ये थी कि गालिबन बहुत से साहिबान की तसल्ली उससे हुई नहीं, तो मैं ये चाह रहा था कि वो लास्ट संडे ही की बात को आज कंटिन्यू कर लेते। जिस तरह दुआ के बारे में बहुत से नजरियात, बहुत सी तारीफ, डेफिनेशन और बहुत सी थ्योरीज मुख्तलिफ औलिया अकराम ने बयान की हैं, इसी तरह शुक्र के बारे में भी बहुत सी तशरीहात मिलेंगी। अगर हम जिस वली अल्लाह को भी पढ़ेंगे, उन्होंने शुक्र की एक तशरीह अपने ही एंगल से की है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना ये है कि शुक्र का शुक्र, शुक्र करने का शुक्र अदा करना शुक्र कहलाता है। यह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह साहब के नजदीक शुक्र का मकाम ये है। हजरत अतार रहमतुल्लाह अलैह साहब ने इसके बरक्स एक चीज कोट की कि हजरत अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जनाब बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से एक दिन सवाल किया कि आपको अपनी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बात ज्यादा अच्छी बात कौन सी लगी, तो आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सारी ही बातें अच्छी थी। मैंने कहा कि चलिए उन अच्छी बातों में से ज्यादा अच्छी बात आपको कौन सी याद है, तो फरमाया कि एक रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मेरे लिहाफ में दाखिल हो गए, तो वहां लेटे लेटे फरमाया कि आज अगर आप मुझे अपने रब की इबादत करने की इजाजत दे दें तो अच्छी बात है। तो बीबी साहब ने फरमाया कि मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो आपको कभी नहीं रोका इस बात से, तो आप जरूर अपने रब की इबादत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और मामूल से ज्यादा पानी सर्फ करके वजू किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। रुकू सजूद और कयाम सब में जारो कितार रोते रहे हत्ता के सीने तक बह गए आंसू। तो सुबह फजर की जब अजान हुई, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी, तो आपने जान नमाज छोड़ दी। तो उस पर बीबी साहब ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप इस तरह आहजारी क्यों कर रहे थे अल्लाह के हजूर कि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा दिए, आपको बख्श दिया परवरदिगार ने। तो फरमाया कि जिस दिन से मुझ पर यह आयत नाजिल हुई है कि मैंने जमीन व आसमान खलीक किए, मैं उस दिन से उसका शुक्र अदा कर रहा हूं। उससे लोगों ने फिर आगे ये नताइज अखज किए कि अल्लाह के हजूर उसकी रबूबियत और उसकी शान के अदराक पर ही शुक्र अदा किया जाए और आजजी के साथ अदा किया जाए, तो ये शुक्र है। इसी तरह एक नबी तशरीफ ले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि छोटे से पत्थर में से बेतहाशा पानी बह रहा है, चश्मा उस छोटे से पत्थर से जारी है, तो बड़ी हैरत हुई कि इतना छोटा सा पत्थर है और पानी की इस कदर मकदार इसमें से बह रही है। उसके पास रुक गए और रुक के उस पत्थर से पूछा कि ये माजरा क्या है, तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को कुव्वत गोयाई अता फरमाई और उस पत्थर ने कहा कि जिस दिन से सूरह बकरा की उस आयत का मुझे पता चला है कि इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन बना दिए जाएंगे, वो गालिबन सूरह बकरा की 24वीं आयत है, वह कूदन नासो ले जा रहा, तो मैं उस खौफ से रो रहा हूं और ये पानी मेरे उस रोने के नतीजे में बहता है। तो उन पैगंबर को बड़ा तरस आया पत्थर पर, और वहीं पे खड़े खड़े अल्लाह के हजूर दुआ की कि या बारी ताला, तू इस पत्थर को माफ फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और जवाब अता फरमाया कि इसकी मगफरत कर दी गई। तो नबी वहां से चल दिए। कुछ दिन के बाद वहां से गुजर हुआ तो देखा उस पत्थर में से पहले से ज्यादा पानी जारी है। तो बड़े हैरान हुए कि अब इसको क्या दुख पहुंचा। पहले तो इसको ये खौफ था कि मैं जहन्नम का ईंधन बना दिया जाऊंगा तो मगफरत होगी, अभी से क्या हुआ। तो उससे फिर पूछा कि तुम्हारे लिए तो मैंने दुआ कर दी थी और परवरदिगार ने मेहरबानी फरमाई थी कि तुम्हें माफ फरमा दिया था, तो अब तुम्हें क्या दुख है जो तुम इस तरह से रो रहे हो कि इतना पानी बह रहा है। तो वो पत्थर से आवाज आई कि पहले आंसू मेरे डर और खौफ के थे, लेकिन अब खुशी और शुक्र के आंसू, तो यूं ये पानी ज्यादा बह निकला। तो इसी निस्बत से कुछ औलिया कराम ने शुक्र की ये तारीफ भी की, जैसे जनाब अबू उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, कि किसी चीज के मिल जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुक्र है, लेकिन उस नेमत के छिन जाने पर शुक्र अदा करना मजीद शुक्र है। फिर गालिबन हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह साहब ने इसकी यूं तारीफ बयान कर दी कि किसी चीज के मिल जाने पर अल्लाह की शुक्रगुजारी शुक्र है, लेकिन किसी मुसीबत के नाजिल होने पर शुक्र अदा करना शकूर होने की निशानी है। शकूर असल में इसके जो इस्लाही मायने हैं वो हैं शुक्र का शुक्र अदा करना। और इसी निस्बत से अल्लाह ताला ने अपने लिए ये नाम पसंद फरमाया। वो अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम शकूर भी है। वो इसी निस्बत से है कि शुक्र के शुक्र अदा करने वाले को शकूर कहते हैं। मैं अभी उसकी वजाहत कर देता हूँ। तो जो अल्लाह ताला ने अपने आप को शकूर कहा वो असल में, जब शायद बहुत से लोगों को उसमें गलतफहमी पैदा हो के रब ताला कैसे किसी का शुक्रगुजार हो सकता है, तो वो अपने आप को उसने शकूर यूं कह दिया कि जब कोई बंदा उसका शुक्र अदा करता है तो उस शुक्र के जवाब में वो शुक्र अदा करता है। ये मजाजन उसने अपने आप से मंसूब की है बात। हकीकत इसकी जरा सी मुख्तलिफ है जो मैं बाद में बताता हूं। ये मजाजन उसी तरह है जिस तरह रब ने कहा कि बुराई का बदला बुराई है, जबकि दर हकीकत बुराई का बदला बुराई नहीं भलाई है, लेकिन वो मजाजन फरमाया कि बुराई का बदला बुराई से दे दो। इसी तरह ये शुक्र का बदला शुक्र, वो मजाजन फरमाया, जबकि असल में इसकी सही जो तशरीह है वो इस तरह से बनेगी कि जब कोई बंदा रब का शुक्र अदा करता है तो रब ताला उसे पसंद फरमाता है। वो यूं शुक्र का बदला शुक्र से देता है कि रब ताला उसे पसंद फरमाता है, उसकी तारीफ करता है, ये उसका शुक्र का बदला। तो यूं इस निस्बत से वो शकूर कहलाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि मजाजन है लफ्ज। ये जो किसी मुसीबत के आने पर शुक्र की बात है, ना तो ये सरकशी है और ना ही ये राउनत में आती बात, बल्कि ये आजजी का और खुद स्पुर्दगी का एक आला मकाम है। बज़ाहिर तो लगेगा कि किसी आदमी पर मुसीबत आई तो वो उसका परवरदिगार का शुक्र अदा कर रहा है, तो ये राउनत और चैलेंज के जिम्मे में आ रही है बात, ऐसा नहीं है, ये आला दर्जे की बंदगी है। वो इस तरह से कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को कोई चीज अता फरमाई तो उसने उसका शुक्र अदा किया कि ये बारी ताला मैं तेरा एहसानमंद हूं, तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने ये मुझे अता फरमाया, और अगर कोई मुसीबत आई तो उसने शुक्र अदा किया कि या बारी ताला तेरी मेहरबानी है, तू रहीम व करीम है, इससे बड़ी मुसीबत भी मुझ पर आ सकती थी, हो सकता है कि तूने इस छोटी सी मुसीबत के बदले कोई बड़ी मुसीबत मुझे मुझसे टाल दी है। फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक और मकाम भी है कि या बारी ताला, तू चूंकि रहीम व करीम है, मेहरबान है, और तेरी शान करीमी से ये कभी तवक्को हो ही नहीं सकती कि ये मुसीबत तूने मेरे भले के लिए ना मुझ पर नाजिल की हो। इसमें यकीनन मेरे लिए कोई भलाई छुपी है, तो मैं तेरा एहसान मंद हूं कि इनमें से कोई भी चीज अगर तूने मेरे लिए पसंद फरमाई तो तेरा बड़ा शुक्र है। ये शुक्र है मुसीबत पर। ये बंदगी और आजजी का एक आला मकाम है। देखिए वो तो कुरान पाक में क्लियरली अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि तुम पर कोई मुसीबत नहीं आती मासवाए तुम्हारे अपने। उसका सिर्फ एक हिस्सा मैं बयान करना चाह रहा था कि आप पे कोई मुसीबत नहीं आती मासवाए आपके अपने। वो उस नस्बत से लोग कहते हैं इसलिए कि उसकी शान करीम है ही ये कि वो माफ कर देता है, गिरफ्त नहीं करता।
कुरब वाले लोग हैं उन पे सबसे ज्यादा मुसीबत है। इसका मतलब ये है कि
बात ये है कि अगर आप किसी दुकान पर जाएं या कोई आपके पास आपसे गाड़ी खरीदने आता है आपकी, तो वो आपको ऑफर देता है कि साहब मैं आपको हार्ड कैश अभी पे कर सकता हूँ, आप ले लीजिए। दूसरी सूरत यह है कि मैं आपको एक चेक दे सकता हूँ पोस्ट क्रेडिट और उसमें मैं 10,000 आपको फालतू दे दूंगा, या ये है कि मैं आपको 2 साल के बाद आप रकम ट्रांसफर कर दूंगा आपके अकाउंट में, अकाउंट नंबर दे दीजिए, उस सूरत में मैं आपको 50,000 एक्स्ट्रा पे कर दूँ। अब अगर आप ये सोचें कि मुझे बाद में पेमेंट लेने में फायदा है तो आप अपनी गाड़ी उसको दे दें। अब आप तो उतने अरसे के लिए बगैर गाड़ी के हुए जब तक के आपकी रकम आपके अकाउंट में आए, अब आप मारे मारे फिर रहे हैं वैगन्स में, बसों में, तकलीफें उठा रहे हैं। तो आपका एक और साथी जिसने हार्ड कैश पर गाड़ी बेच दी, वो दूसरी गाड़ी आराम से लिए फिरता और आपके पास से तेजी से गुजर जाता है हर रोज, तो आप दुख उठा रहे हैं। लेकिन 2 साल में उस आदमी की गाड़ी जो है घिस घिसा के आधी कीमत की भी नहीं रह जाएगी और आपको उस वक्त 2 साल के बाद कई गुना ज्यादा पैसा मिल जाएगा जिससे आप नई मर्सिडीज खरीद सकेंगे। तो चॉइस आपकी है, जौन सा भी सौदा कर लें। तो वली अल्लाह जितने भी अल्लाह ताला के साथ सौदे करता है वो 70 गुना ज्यादा प्राइस पर करता है कल के वादे पे। तो फिर तो वो वैगनों में बसों में धक्के खाएगा क्योंकि उसको तो 70 टाइम्स ज्यादा कल को चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग कल के वादे का सौदा नहीं करते, वो 70वें हिस्से पर आज ही पेमेंट ले लेते हैं, तो वो फिर कल को वो धक्के खा रहे होंगे हमेशा के लिए और वली अल्लाह ऐश कर रहे होंगे। किस्सा सिर्फ इतना ही, अगर मैं इसे एक्सप्लेन सही कर पाया हूं तो यूं है। नहीं देखिए बात मुसीबत उस सेंस में नहीं जिस सेंस में आप समझ रहे हैं। ये जितने भी लोग गुजरे हैं इन पर जो मुसीबतें आई हैं, जो इन्होंने सौगतें उठाई हैं, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए उठाई हैं। ये बिल्कुल इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि आप पुलिस की लीगल ब्रांच में भर्ती हो जाइए, यूनिफॉर्म आपने पहन ली, अब आपकी ड्यूटी ये है कि जब अदालत खुली चले गए, 2 बजे अदालत बंद हुई, घर फारे होके आ गए, बाकी सारा साल फारे हैं आप। हैं आप इंस्पेक्टर, यूनिफॉर्म वही पहनते हैं आप, फिर आप FIA में इंस्पेक्टर होके चले गए। अब आपकी ड्यूटी जो है वो मुंसलिक हो गई आपके बॉस के आने जाने से, क्योंकि अगर आपका इंचार्ज जो है वो 5 बजे तक बैठा तो आप भी बैठे। अगर आप FIA से हटके किसी इलाके के थाने में जाके लग गए ऐसे, तो अब आप ये है कि कभी रात को उठ के जा रहे हैं, कभी दिन को जा रहे हैं, कभी पुलिस मुकाबला डाकुओं से हो रहा है, कभी चोरों के ताकुब में जा रहे हैं, ईंट लग रही है सर में, कभी हाथ पे चोट लग रही है, कभी नाक पे लग रही है। और अगर आप फौज में चले गए तो अब 24 घंटे के मुलाजिम हो गए, ठीक है, न धूप का पता, न बारिश का पता, न भूख का, न प्यास का। और अगर फौज से हटके कमांडोज में चले गए तो बिल्कुल ही हशर बिगड़ गया इंसान का। अब आप मुझे ये बताइए कि कमांडो जिसकी सब इज्जत करते हैं, एहतराम है दिल में, तो वो ये जो सब सौबतें उठाता है तो ये क्या उसके अमाल का नतीजा है? तो पैगंबर जितने भी हैं उन पर उस टाइप की मुसीबतें नहीं आई जिसको कुरान में रेफर किया गया, वो उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए वो मुसीबतें और वो दुख उठाए हैं, उम्मत के लिए उठाए हैं। वो उन पर उस तरह की मुसीबतें नहीं आई जिसको रेफर कुरान कर रहा है। अगर इंसान का हाथ चलता है, ठीक है, तो ये उसके अपने अमाल का नतीजा है। लेकिन अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डाल दे तो वो ड्यूटी परफॉर्म करने के नतीजे में आया है। दोनों में बड़ा फर्क है।
नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि बाज लोगों पे इतनी मुसीबतें आई होती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद दूसरी, और उसमें कोई ऐसी जाहिर तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है। मेरी पेशेंट है, आई है, उसका अभी भाई फौत हो गया, थोड़ी
नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप असल में पहले तो इस फर्क को समझिए कि मुसीबत कितनी किस्मों की है। वो कंसेप्ट जब इंसान का क्लियर हो जाएगा तो फिर बाकी चीजें क्लियर होने लगेंगी। इसलिए मैंने वो मिसाल आपको दी थी कि अगर तंदूर में रोटी जलाते लगाते हुए मेरा हाथ जल जाए, या निकालते हुए हाथ जल जाए, या हंडिया पकाते हुए हाथ जल जाए, तो वो मेरी लापरवाही का नतीजा है। ये मुसीबत है, जलने की मुसीबत ही है ना ये। और अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए तो वो मुसीबत नहीं है, वो ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, वो जो मैंने मिसाल आपको कमांडो की दी थी वो है। औलिया अकराम की आपने मिसाल दी, अब फर्ज कर लीजिए कि एक वली अल्लाह बाजार जाता है, वो शू उसे पसंद आता है, एक बड़ा खुश होता है कि ये शू बड़ा अच्छा है, ये मैं फौरन ले लूं, तो शू नहीं मिलेगा वो, या रंग नहीं होगा, या वो डिजाइन उसके साइज में नहीं होगा, कुछ और रीजन बनेगी, नहीं मिलेगा। अब इसको दो एंगल से देखा जा सकता है। एक एंगल तो ये है कि ये मुसीबत है, उसमें उसे सजा मिल रही है, जूता ही नहीं उसको कम वक्त को अपनी पसंद का मिलता साल साल भर। एक ये भी हो सकती है कि अल्लाह ताला उसकी नफ्स की ख्वाहिशात से उसे बचा रहा है कि नफ्स का गुलाम ना होने पाए। अब बताइए कि अगर अल्लाह ताला अपने दोस्त को नफ्स का गुलाम होने से बचा रहा है और उसके दिल पसंद जूता ही नहीं उसे मिलने देता, साल साल भर गुजर जाता, फिर कहीं एक छोड़ तीन जूते दे देता अल्लाह, तो ये मुसीबत है या ये इनाम है? है ना। इसी तरह अगर एक शख्स को एक मखसूस कपड़ा बहुत पसंद है, वो सूट खरीद के लाता है बड़ी खुशी से, तो यार पिक एंड पिक मिल गया मुझे, लाके दर्जी को देता, पता लगा दर्जी ने खराब कर दिया, फिर कोशिश करता, फिर वो प्रेस होते वक्त जल गया, वो कोशिश करता रहता 30 साल, उस कपड़े का नहीं मिलता, लेकिन उससे उतने ही कीमती कपड़े या उससे बेहतर दूसरे उसको मिलते जाते हैं, वो नहीं मिलता, تو یہ مصیبت ہے یا اس کو نفس کی غلامی سے بچایا جا رہا ہے نا؟ اسی طرح بھوکے پیٹ آدمی عبادت بڑی اچھی کرتا ہے، جب اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، تو رب کے زیادہ قریب چلا جاتا ہے دکھ کے مارے۔ تو اگر کسی ولی اللہ کو لوگ تنگ کر رہے ہوں، اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوں اور وہ دکھ اٹھا کے، کیونکہ ولی اللہ آگے سے پلٹ کے جوابی کاروائی تو کر نہیں سکتا، اللہ نے منع کیا، اللہ کو پسند نہیں وہ بات، سب کچھ سہتا خاموشی سے، نتیجہ ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر دکھ پالتا ہے وہ۔ اس دکھ پالنے کے جواب میں اس کے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے اور رب کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مصیبت ہے یا رحمت ہے رب کی؟ اگر اس کے برعکس انسان کو تمام دنیاوی آسائشیں حاصل ہو جائیں اور وہ دنیا میں کھو جائے اور رب سے دور ہو جائے، اب کلیئر ہو گئی بات کہ جسے آپ مصیبت گن رہے تھے اصل میں وہ مصیبت نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ کلیئر نہیں ہوگا جب تک کہ مصیبت کو آپ سمجھ نہ لیں۔ یہ فرق ہے۔ ابھی ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا بڑے شاہ صاحب کے پاس، بات ہو رہی تھی، تو معلوم نہیں کیا دل میں آیا، ہماری تو ہمت نہیں تھی کہ کوئی ذاتی سوال کرتے، تو خود بخود فرمانے لگے کہ میں نے شادی کی تھی، ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، تو وہ کچھ دن یا کچھ مہینوں کے بعد مر گیا۔ ظاہر ہے باپ اولاد تھی تو آواز میں کوئی دکھ ہونا چاہیے تھا، دکھ کے قطن نہیں تھا۔ کہنے لگے میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ یہ مر گیا، اگر وہ زندہ رہتا تو شیطان ہوتا اور میرے لیے ایک عذاب بنتا، مر گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مر گیا، لے لیجئے۔ کسی شخص کا اگر بیٹا مر جائے تو وہ زندہ درگور ہو جاتا ہے، ہم اس کو بہت بڑی مصیبت گردانیں گے، وہ کہہ رہے ہیں میں نے شکر ادا کیا۔ تو یوں یہ مصیبت پہ شکر کی ایک مثال میں نے آپ سے ابھی واضح کر دی۔ بیگم کے مرنے کا ذکر وہ اس طرح کرتے تھے جیسے ایک بڑی مصیبت سے نجات حاصل ہو گئی۔ اصل میں دقت وہاں آتی ہے جہاں پہ ہماری تمام تر جو زندگی ہے اس کا محور دنیاوی آسائشیں اور دنیاوی کامیابیاں بن جاتی ہیں۔ اگر کبھی یہ دیکھنا ہو کہ ہم زبانی خواہ کتنے بڑے دعوے کر رہے ہوں کہ ہم آخرت کے لیے مرتے جا رہے ہیں اور گھل رہے ہیں، اس کے کیو ٹی وی پر استخارہ ایک پروگرام آتا ہے یا اسی طرح کے ایک دو اور پروگرام آ رہے ہیں، جیو پر بھی آ رہا ہے، کبھی اسے دیکھیے، اس پروگرام کو پروگرام دیکھ سمجھ کر نہ دیکھیے گا، اس کو سٹڈی کیجیے۔ کال کرنے والے 100% مسلمان ہوتے ہیں، کوئی نان مسلم نہیں کال کرتا، پے در پے کئی پروگرام دیکھ لیجیے آپ، ایک بڑی حیرت انگیز چیز وہاں ملے گی کہ جتنے لوگ وہاں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہوں گے، جتنے مسائل دے رہے ہوں گے، وہ سب کے سب دنیاوی حصول کے ہوں گے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ انسان فکر مند اسی چیز کے لیے ہوتا ہے جسے وہ اہم سمجھ رہا ہوتا ہے، جتنی زیادہ جس کے لیے چاہت ہوتی ہے جس چیز کے لیے، اتنے ہی زیادہ اس کے لیے پریشان ہوتا ہے انسان۔ تو سب لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات کے لیے۔ میں نے بہت گہرائی سے ان پروگرامز کو بھی دیکھا، ذاتی تجربہ بھی ہے، ابھی تک کبھی کسی ایسے آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی جس نے آخرت کے لیے سوال کیا ہو۔ ایک عجیب بات ہے کہ دعویٰ، مجھ کو بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں آخرت کے بارے میں بڑا پریشان ہوں، لیکن سچائی یہ ہے کہ شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک دن دھیان آیا کہ اچھا اب تو شاید رخصت کا وقت آ گیا، वो एक लम्हे भर को ख्याल आया था कि यार रुख्सत होने का वक्त तो आ गया, लेकिन किस मुंह से जाओगे? फिर दुनियावी मसरूफियत में लग गया, फिर भूल गया कि क्या होगा। सच्चाई ये है। अब ये देखिए कि बुढ़ापे में आजकल औलाद ज्यादातर कह रहा हूं, ऐसे तो बड़े बड़े अच्छे फर्मा बरदार सादतमंद बच्चे भी हैं, माँ बाप उनके हाथों दरबदरी हो जाते हैं, डिग्री का फर्क होता, ख्वारी सबको हो जाती है, लेकिन इतने परेशान होते हैं कि अगर उससे 50% परेशान हो जाए आखिरत के लिए तो दुनिया भी संवर जाएगी। ये बातें तलख हैं, दिल को अच्छी नहीं लगती, लेकिन सच्चाई यही है।
शुक्र अदा करने का बेहतर तरीका उसकी मखलूक के ही काम आना
नहीं। वो मैंने लास्ट सेटिंग में यही बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया था, जिस तरह अभी मैं अर्ज कर रहा था कि दुआ की तरह शुक्र भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तमाम औलिया इकराम ने अपनी अपनी तारीफ बयान की है। तो मैंने उस दिन बहुत ही मुख्तसर बात यही कही थी कि मेरे नजदीक शुक्रगुजारी का बेहतरीन अमली तरीका। देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि शुक्र अदा करने के 5 तरीके हैं। एक तो है जुबान से। जब इंसान जुबान से शुक्र अदा करता है तो वो उसका मतलब यह है कि वो निहायत आजिजी के साथ नेमत अता करने वाले का एहसान भी माने और उसकी तारीफ भी बयान करें। ये जुबान से शुक्र है। दूसरा शुक्र का तरीका कल्ब से है। कल्ब से शुक्र अदा करने का तरीका यह है कि इंसान अपने आप को निहायत आजिज गिन ले और ये मान ले दिल में कि जो कुछ मुझे अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई हैं मैं हरगिज उसके लायक नहीं था, लेकिन ये उसने मुझ पर एहसान फरमाया और ये मुझे अता कर दी। ये दिल से तस्लीम कर ले, कल्ब से। तीसरा तरीका अमली है, प्रैक्टिकल। उसका तरीका कार ये है कि इंसान उन हदूद की अंदर रहे जो हदूद अल्लाह ने मुकर्रर की हैं, और उन हदूद के अंदर रहता हुआ अपने इरादों को फना कर दे और अल्लाह के इरादों के ताबे हो जाए। ये अमली तरीका है शुक्रगुजारी का। चौथा तरीका है आंखों से, आंखों का शुक्र है। वो ये है कि जब किसी शख्स के कोई ऐब देखे, कोई उसके अंदर खामी देख ले, बुराई देख ले, तो उसकी पर्दापोशी कर दे, उसको वहीं पर दफन कर दे, बात को देखी हुई बात को। पांचवा है कानों से। तो कानों का शुक्र यह है कि अगर किसी का ऐब सुनने में आ जाए, उसकी कोई बुराई, उसकी कोई खामी सुनने में आ जाए, तो उसको सुनकर आगे बयान न करे, वहीं पर दफन कर दे, खत्म कर दे, उसे छुपा ले। ये पांचवा शुक्र। अब आगे फिर आगे इसका किस्सा आ जाता है कि दुनियादार का एक शुक्र है, या दूसरे लफ्जों में आलिम का शुक्र है। दूसरा शुक्र आबिद का है और तीसरा शुक्र फकीर का है। अब इन तीनों में बड़ा फर्क है। और फकीर का शुक्र जो है वो सबसे आला है कि वो अपने आप को अल्लाह ताला की सिफात में फना कर देता है, उसके नूर में अपने आप को फना कर देता है, उसकी अपनी हस्ती खत्म हो जाती है और वो फना फिल अल्लाह हो जाता है। یہ فقیر کا شکر ہے. تو اسی طرح وہ میں نے اس دن اس کو ذرا دنیاوی الفاظ میں بیان کیا تھا کہ میرے نزدیک شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان دل سے اور صدق دل سے یہ سمجھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں, میری محنت کی کمائی نہیں ہے, میرے بلکہ میرے رب کا عطا کردہ ہے, اور جو کچھ میرے پاس ہے اس پر میرا صرف اتنا حق ہے کہ میں اس سے اپنی جائز, اپنی اور اپنی اہل خانہ کی جائز ضروریات پوری کر لوں, اور وہ جائز ضروریات پوری ہو جانے کے بعد جو کچھ بچ رہے وہ سب اللہ کا ہے اور اس پر اللہ کے سب بندوں کا حق ہے, کوئی لے جائے اسے, دوسروں کے کام آ جائے وہ. تو جب دوسروں کی خدمت کرے اس بچے ہوئے رزق سے تو ذہن میں یہ نہ آئے کہ میں کسی کی خدمت کر رہا ہوں, بلکہ احسان مند ہو اس آدمی کا جس کی اس نے خدمت کی ہے کہ اس نے اس سے اپنا حصہ بر وقت وصول کر کے اسے فرائض سے بری ذمہ کر دیا. اس کو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے, چونکہ بہت بڑے ولی تھے اور علم کے بڑے اعلیٰ مقام پر تھے, تو جس بات کو میں نے اتنے زیادہ الفاظ میں ادا کیا جناب داتا صاحب نے اس کو بہت ہی مختصر الفاظ میں بیان کر دیا. آپ نے فرمایا کہ انسان پر لازم ہے, بلکہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کی خدمت اس طرح سے کرے کہ خود خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے تم سے خدمت لے کر تم پر احسان کیا ہے. یہ شکر ہے. نہیں, وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ لفاظی ہے ساری. بہت دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی حد تک تو یہ لفاظی ہے. ہم بڑے بڑے خوبصورت الفاظ کہتے ہیں, لیکن جو ہماری عملی زندگی ہے, جو ہمارے اعمال ہیں, وہ اس کے بالکل برعکس کہانی سناتے ہیں. میں جتنا بھی کہتا رہوں آپ سے, کتنے خوبصورت الفاظ میں کہتا رہوں کہ آخرت کی تیاری مجھے کرنا ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے روز قیامت اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے, یہ سب میں بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کروں گا, لیکن جو اعمال ہیں میرے وہ اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں. جس میں نے عرض کیا کہ جس چیز کو انسان اہمیت دیتا اور جتنی جس چیز سے وہ پیار کرتا ہے اس کے بارے میں اتنا ہی پریشان ہوتا. تو میں نے آپ کو پروگرام کا حوالہ دیا, تو اگر کہیں دل میں واقعی ہمارے پریشانی ہو آخرت کی, تو ہمارے سوال یہ نہیں ہوں گے کہ میرے بیٹے کا داخلہ ایچ ایس این میں نہیں ہو رہا تو دعا کر دیجئے کہ داخلہ ہو جائے.